कनेक्ट हुए और वह परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के शिष्य है। उन्होंने लगभग 7 वर्षों तक गोवर्धन इको विलेज में डॉक्टर के रूप में सेवा किया है और अब वह वाड़ा शहर में अपना 15 बेड वाला हॉस्पिटल चला रहे हैं। तो आज का सत्संग का विषय है ब्रह्म विमोहन लीला। तो हम उसे आग्रह करते हैं वो अपना सत्संग कार्यक्रम शुरू करें। थैंक यू।
हरे कृष्णा। लेडीज इस साइड बैठ सकते हैं, जेंट्स इस साइड बैठ सकते हैं। कृपया आगे आके बैठिए, जितना भी समय आपके पास रहे उतना प्रवचन सुनने का प्रयास कीजिए। उसके पश्चात सबके लिए महाआरती है, भगवान का महाआरती होगा और सबके लिए लंच प्रसाद भी है। तो कृपया प्रवचन में बैठे, उसमें आपको कूपन मिलेगा उससे आपको विशेष लंच प्रसाद का भी लाभ मिलेगा। प्लीज बैठिए। हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा जय राधा माधव कुंज विहारी, जय जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, जय जय राधा माधव कुंज विहारी, जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा वृंदावन बिहारी राधा वृंदावन बिहारी राधे जय जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे जय गिरि गोवर्धन गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय 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 गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय जय नितय गौर हरि बोल हरि बोल नितय गौर हरि बोल नितय गौर श्री हरि नाम संकीर्तन की श्रील प्रभुपाद की ओम अज्ञान तिमिरंतस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन मिलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज के इस रविवारीय सत्संग कार्यक्रम में सबका हार्दिक स्वागत। तो जैसे कि प्रभु जी ने बताया, आज हम ब्रह्म विमोहन लीला, ये जो भगवान श्री कृष्ण की लीला है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। हालांकि शीर्षक ब्रह्म विमोहन लीला है, पर इसमें हम अंग्रेजी में बोलते हैं इंचैंटिंग पिकनिक, माने एक पिकनिक का वर्णन करेंगे और उसमें किस प्रकार भगवान लीला करते हैं वो सुनेंगे। तो आप में से कुछ लोग पहले से हरे कृष्णा संस्था से जुड़े हुए हैं, उनको ये कथा पता होगी, और कुछ लोग नए हैं, उनको शायद ये कथा पता भी नहीं होगी, परंतु आज हम सुनेंगे तो उसका निश्चित रूप से सभी को लाभ होगा। तो जैसे मैंने अंग्रेजी में कहा कि इंचैंटिंग पिकनिक, तो पिकनिक का एक्चुअली आज हम थोड़ा दोनों दिशा से चर्चा करते हैं कि पिकनिक का अर्थ क्या होता है, माने पिकनिक के लिए हम क्यों जाते हैं या पिकनिक का मतलब क्या है। प्रभु जी आप बताइए। हाँ, सहल, मराठी में बोलते हैं सहल, सहल का मतलब क्या है, क्यों करते हैं पिकनिक के लिए, हम क्यों जाते हैं। दीदी आप बताइए, पिकनिक को अभी कभी गए कि नहीं? मजा, प्रभु जी बोले कि मजा करने के लिए जाते हैं। हाँ, बराबर है, आनंद लेने के लिए। हम मजा को, और अच्छा हिंदी शब्द है आनंद, आनंद के लिए हम पिकनिक के लिए जाते हैं। तो आप यहाँ पे क्यों आए आप बताइए, गोवर्धन इको विलेज जहाँ पे आप अभी बैठे हैं, यहाँ पे आप पिकनिक के लिए आए या और कुछ उद्देश्य है आप बताइए। हाँ, आनंद के लिए आए हैं, तो पिकनिक के लिए आए हैं। कुछ लोग पिकनिक के लिए आते हैं, कुछ लोग आध्यात्मिक भी कुछ किसी का ये रहता है कि भगवान का दर्शन ले, वृंदावन धाम घूमे, प्रसाद पाए। कुछ लोगों को नृत्य करने में बहुत आनंद आता है, जैसे कि प्रभु जी ने अनाउंस किया 12 बजे डांसिंग कीर्तन होगा, भगवान श्री श्री राधा वृंदावन बिहारी जी का आरती होगा, और आरती में हम नृत्य, भगवान की प्रसन्नता के लिए नृत्य करते हुए भी आनंद ले सकते हैं। तो अलग अलग प्रकार के आनंद है, और वह लेने के लिए हम पिकनिक के लिए जाते हैं। तो भले कुछ लोग कई फार्म में जाते हैं पिकनिक के लिए, कुछ लोग रिसोर्ट में जाते हैं, कुछ लोग मंदिर में आते हैं, और कुछ लोग अलग अलग जगह पे शहरों में पब रहते हैं डांस करने के लिए वगैरह, ऐसे अलग अलग जगहों पर लोग आनंद लेने के लिए जाते हैं उसी प्रकार। परंतु आपको ऐसा कोई जगह पता है इस भौतिक जगत में जहां पे हमेशा आनंद मिलता रहे, हमेशा कंटिन्यू ब्लिस, कंटिन्यू आनंद? प्रभु जी बताइए, हाँ प्रभु जी बोल रहे भक्तों के लिए भगवान का धाम है या वृंदावन धाम या कहाँ, वहां पे हमेशा आनंद मिलता रहता है, बराबर है। एक हिंदी में एक सॉन्ग था, कुछ लोगों को पता रहेगा, कुछ लोगों को फर्स्ट टाइम सुनते रहेंगे, मैं सुनाता हूँ। आप देखिए ऐसा इमेजिन कीजिए, ऐसा होता है क्या किधर, आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी न हो आंसू भी न हो बस प्यार ही प्यार पले। ऐसी जगह पे जाने में सबको आनंद आएगा। किस किस को ऐसी जगह पे जाना है, सबको जाना है, परंतु ऐसी जगह कहां पे, प्रभु जी बोले धाम में। परंतु भौतिक जगत में हम धाम में भी जाते हैं तो कभी कभी माइंड में कुछ और ही चलता रहता है। मराठी में एक प्रोवर्ब है, धड़ देवड़ा चित्त पायतनात, मतलब बैठे हैं मंदिर में और ध्यान लगा है चप्पल में, मेरा चप्पल कोई उठा के ना लेके जाए, ऐसा मराठी में एक प्रोवर्ब है। परंतु भले चप्पल में नहीं रहेगा हमारा मन, परंतु दूसरी जगह में रहता है। कोई डॉक्टर है तो उसका दिमाग रहता है कि मेरे पेशेंट का क्या हाल है, हॉस्पिटल का क्या हाल है। कोई टीचर है तो बोलता है अभी छुट्टी में क्या क्या करेंगे, गणेश उत्सव आ रहा है, गांव जाएंगे, मतलब बैठे हैं मंदिर में परंतु ध्यान दूसरी जगह पर। तो ऐसा भी कभी कभी होता है, तो उसका हमें पूरा पूरा लाभ नहीं मिलता है। परंतु इस भौतिक जगत को भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये दुखालयम अशाश्वतम है। इस दुनिया का डिफिनेशन करते हैं, व्याख्या करते हैं कि दुखालयम अशाश्वतम। आलय का मतलब क्या है, घर। अभी पुस्तकालय, वहां पे क्या मिलेगा, पुस्तक मिलेंगे। औषधालय, वहां पे क्या मिलेगा, औषध मेडिसिन मिलेंगे। तो दुखालय, दुखालय में क्या मिलेगा, दुखी मिलेगा। अभी जो व्यक्ति ने इस दुनिया की निर्मिति की है वे खुद भगवद गीता में बोल रहे कि ये दुख का आलय है, तो उसमें हमको सुख आनंद खोजने जाएंगे तो मिलेगा? जैसे समुद्र में हम मीठा पानी ढूंढने जाएंगे तो मिलेगा, नहीं मिलेगा। उसी प्रकार ये भौतिक जगत एक दुख का सागर है, परंतु परंतु इसमें भी अगर हम पूरा प्रवचन सुनेंगे तो उसके लास्ट में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार इस भौतिक जगत में रहते हुए हम आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं, और साथ ही साथ अंते हमारे जीवन पूर्ति के पश्चात भी हम यह चिर आनंद प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान का जो धाम है, जो भगवान का धाम वैकुंठ धाम कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग गोलोक वृंदावन बोलते हैं, राम भगवान का एक धाम है मतलब अयोध्या धाम। तो ये जो भगवान के धाम है ये यहाँ पे चीर काल तक मतलब अनंत रूप तक आनंद मिलता है। भौतिक जगत में जो आनंद मिलता है हमें वो टेम्पररी है। मानो आप कोई रिसोर्ट में गए या कोई मूवी देखने गए या कुछ भी आपके जो कल्पना है आनंद की, हाँ किसी को किस चीज में आनंद आता है, किसी को और चीज में आनंद आता है, परंतु यह आनंद सीमित है। मानो आप मूवी देखने गए, 3 घंटे का मूवी देखा, उसके पश्चात वो आनंद थोड़ा देर रहेगा, लुप्त हो जाएगा। कोई किसी को खाने में बहुत आनंद आता है, गुलाब जामुन किसी को बहुत पसंद है, 1, 2, 3, 4, 10 खाए बस, उसके बाद वो खुद ही नहीं खा सकता है, और खाया तो भी वो आनंद नहीं देगा, उसके बाद बीमारी देगा, है ना, ज्यादा खाया तो। तो उसी प्रकार ये जो भौतिक जगत में हमें आनंद मिलता है वो टेम्पररी है। अगर हमको ये भौतिक जीवन में जो आनंद की व्याख्या इस प्रकार की जाती है कि दुख से थोड़ा जो गैप मिलता है, 2 दुखों में जो गैप मिलता है उसी को हम आनंद मान लेते हैं। ये प्रॉब्लम खत्म हुआ, दूसरा प्रॉब्लम चालू होने के लिए थोड़ा समय है, उसमें जो गैप मिला है उसी को हम आनंद मान लेते हैं। परंतु सच्चित आनंद जो हमारा स्वरूप है, हम भगवान के अंश है, और इस कारण जैसे भगवान सच्चित आनंद रूप है, उसी प्रकार आत्मा जो कि भगवान का अंश है वह भी सच्चित आनंद रूप है। सत का मतलब है इटर्नल, चित का मतलब है नॉलेज, और आनंद का मतलब है ब्लिस। हमको चाहिए, इसीलिए हम आनंद की खोज में हैं, क्योंकि हम भगवान के अंश है, और भगवान तो हमेशा, आपने कभी राधा वृंदावन बिहारी जी के चेहरे पे नाराजगी देखी है क्या, या मदन मोहन जी के चेहरे पे ऐसा मुंह लटकाए हुए बैठे, ऐसा कभी देखा है? हमेशा आनंद में रहते, यह तो विग्रह है, यह तो विग्रह है। परंतु गोलोक वृंदावन वैकुंठ धाम में आप जब जाएंगे वहां पे तो भगवान और उनके पार्षद सभी जन हमेशा आनंद में रहते हैं। क्यों? क्योंकि वे सच्चिद आनंद रूप, उनका स्वरूप ही उस प्रकार का है कि उनके कण कण में आनंद भरा हुआ है। तो यहां पर आने के बाद भी कुछ लोग पिकनिक के लिए आए होंगे, कुछ लोग दर्शन के लिए आए होंगे, कुछ लोग टेंशन में आए होंगे। चार प्रकार के लोग भगवान के पास आते हैं, भगवत गीता में श्लोक है, चार प्रकार के लोग भगवान के पास आते हैं। अर्थो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी। अर्थो माने कोई किसी को कुछ दुख है, तकलीफ है, वो भगवान के पास आता है। कुछ लोगों को अर्थार्थी, कुछ लोग को कुछ अपेक्षा है, भगवान मेरी शादी नहीं हो रही है मुझे लड़की दिला दो, मुझे बच्चा नहीं हो रहा है मुझे बच्चा, मेरा मुझे धन दिला दो, मुझे ऐसे अलग अलग चीजों के लिए, धनम देई पुत्रम देई, अलग अलग चीजों मांगने के लिए बहुत से लोग भगवान के पास आते हैं। तीसरे लोग है जिज्ञासु, माने उनको भगवान कौन है, मैं कौन हूं, मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है, अच्छे लोगों के जीवन में बुरी चीजें क्यों होती है, ऐसे प्रश्न पड़ते हैं। ऐसे लोग भी भगवान के पास आते हैं, उनको पूछते हैं, उनके भक्तों को पूछते हैं, तो ऐसे जिज्ञासु लोग आते हैं। और चौथी कैटेगरी है ज्ञानी, उन्होंने इस भौतिक जगत का, आध्यात्म का पूरा पढ़ाई किया हुआ है और उनको समझा है कि इस दुनिया में केवल एक शाश्वत चीज है, वो भगवान है, और भगवान का नाम है, भगवान के भक्त है, तो इसलिए भगवान के शरण में ऐसे चार प्रकार के लोग आते हैं। तो परंतु कोई भी प्रकार का व्यक्ति हो, किसी भी मोटिव से भगवान के पास आया हो, उसको मंदिर में आने के पश्चात एक शांति का अनुभव होता है, एक सुकून मिलता है, एक अच्छा फीलिंग अपने हृदय में आता है। क्यों आता है? क्योंकि भगवान सच्चिदानंद रूप है। जय श्री श्री राधा वृंदावन बिहारी भगवान की जय। हरे कृष्णा। कथा में थोड़ा देर बैठ सकते हैं, उसके पश्चात वापस दर्शन खुलेगा, दर्शन लेके जा सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि क्योंकि भगवान सच्चिदानंद रूप है, हमको भी भगवान के संपर्क में जब हम आते हैं तो हमें भी उस आनंद का आभास या जो अनुभव हमें भी आता है। भले वो कोई व्यक्ति भक्त हो, भक्त ना भी हो, नया व्यक्ति हो, कोई भी हो, अगर वो भगवान के संपर्क में आता है तो निश्चित रूप से कुछ क्षण के लिए तो हमें भगवान के आनंद का हमें भी अनुभव होता है। तो भगवान के धाम का वर्णन स्वयं ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में करते हैं। चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्षा लक्षावृतेषु सुरभीर विपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम् गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान का एक नाम है गोविंद। गो माने सेंसेस, विंद माने उसको आनंद देने वाले। हमारे जो इंद्रिय है वो अगर हम भगवान की सेवा में लगाएंगे तो निश्चित रूप से इन इंद्रियों को आनंद प्राप्त होगा। भगवद गीता में और एक श्लोक है, उसमें कहा गया है कि अगर हम इंद्रियों को, इंद्रिय उपभोग करने की जो साधन है उसके सेवा में लगाएंगे तो निश्चित रूप से दुख प्राप्त होगा। अगम आपयिनो नित्यास ताम तितिक्षस्व भारत। तो क्या बोलते हैं कि जब इंद्रिय के जो उपभोग करने के साधन है उसके हम संपर्क में लाएंगे तो कुछ क्षण के लिए हमें आनंद प्राप्त होगा, परंतु आखिर में उससे दुख ही प्राप्त होगा। उसके विपरीत ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। भक्ति की व्याख्या है कि भगवान के सेवा में हमारे इंद्रिय, ऋषिकेश का मतलब है इंद्रियों के स्वामी और ऋषिकेण माने इंद्रिय। अगर इंद्रिय हम इंद्रियों के जो स्वामी है भगवान श्री कृष्ण उनकी सेवा में लगाएंगे तो निश्चित रूप से हमें आनंद प्राप्त होगा। तो ऐसे भगवान के चिंतामणि धाम का वर्णन शास्त्रों में आता है। तो हमें पहले देखना है कि ब्रह्मा जी कौन है, उनके बारे में थोड़ा हमको नॉलेज हो जाएगा तो ब्रह्म विमोहन लीला क्या है वो हम थोड़ा समझ पाएंगे। तो हम जब साइंस पढ़ रहे थे उसमें डार्विन्स थ्योरी आता है। आप में से किस किस को पता है डार्विन का सिद्धांत, साइंस में रहता था, मानवाची उत्क्रांति, ह्यूमन इवोल्यूशन, अंग्रेजी में बोलते हैं ह्यूमन इवोल्यूशन। तो उनके सिद्धांत के अनुसार मनुष्य का जो उत्क्रांति हुआ है या मनुष्य का जो निर्माण हुआ है वो बंदर से हुआ है, बंदर का होमो सेपियन, ऐसा अलग अलग चीजें होते होते हम ह्यूमन बने हैं। परंतु शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि मनुष्य का उत्पत्ति जो हुआ है वो मनु से हुआ है, भगवान श्री ब्रह्मदेव ब्रह्मा जी ने हमारा उत्पत्ति किया है। आप में से किस किस को लगता है कि आप बंदर से अपना उत्क्रांति हुआ है, और किस किस को लगता है कि ब्रह्मा जी से हमारा उत्पत्ति हुआ होगा? तो बहुतांश किसको लगता क्या होगा, इससे भी इंपॉर्टेंट है एक्चुअल में क्या है। देखिए बाइबल में भी एक कहावत है कि मैन इज मेड इन द इमेज ऑफ गॉड, मतलब हमको भगवान ने अपनी प्रतिकृति में बनाया है। हम अभी भगवान को भी देखते हैं, भगवान श्री श्री राधा वृंदावन बिहारी जी को, तो कितने सुंदर है। हाँ, भगवान को भी हाथ है, पैर है, आंखें है, सब अपने से भी सुंदर है। तो इसी प्रकार मनुष्य की जो उत्पत्ति है वो भगवान से हुई है, और ब्रह्मा जी जो है वो फर्स्ट क्रिएटर है, उन्होंने पूरी सृष्टि की निर्मिति की है। तो भले ही साइंस या डार्विन जी कहे कि हम बंदर से आए हैं, परंतु शास्त्र कहते हैं कि हम भगवान श्री ब्रह्मा जी ने हमारी उत्पत्ति की है, और इसका प्रमाण भी है, क्योंकि हजारों हजारों साल पहले हमारे शास्त्र लिखे गए हैं। डार्विन के सिद्धांत के अनुसार उस समय पे शायद मनुष्य थे भी नहीं, परंतु हमारे शास्त्र जो है उसमें कई ऐसी चीजें लिखी गई है जो आज के जो वैज्ञानिक युग है उसमें भी सत्यता उसकी जांच की जा सकती है। तो इसलिए हमको हम साइंटिफिकली वैज्ञानिक रूप से भी अगर पढ़ाई करते हैं तो भी हमें समझ में आएगा कि मनुष्य की उत्पत्ति जो है वो बंदरों से नहीं, बल्कि भगवान ने अपने प्रतिकृति में हमको बनाया है ब्रह्मा जी के द्वारा। ब्रह्मा जी, उनके बाद मनु आए, ऐसी अनेकों पीढ़ियों के बाद मनुष्य आए हैं। तो हमको चाहिए कि ब्रह्मा जी कौन है ये समझना चाहिए। ब्रह्मा जी का और हमारा समय भी थोड़ा डिफरेंस है। मानो हमारा एक साल है तो ब्रह्मा जी के समय में वो केवल एक क्षण होता है। हर एक व्यक्ति का आयु जो है वो फिक्स है। मानो जैसे बोलते हैं कि हम हमारी सांसों की गिनती फिक्स बोलते हैं कि इतना आप जियोगे। जैसे जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जैसे भगवदगीता में कहा गया है कि जो जन्म लेता है उसको मृत्यु कन्फर्म है। अंग्रेजी में बोलते हैं एज श्योर एज डेथ, मतलब मृत्यु के इतना श्योर कुछ भी नहीं है, बाकी सब चीजें थोड़ा आगे पीछे हो सकती है, परंतु मृत्यु बराबर समय से आएगी। तो एक उसमें उदाहरण आता है कि एक पक्षी, छोटा पक्षी था, उसको लिखा था कि ऐसे ऐसे दिन पे आपका मृत्यु होगा, और तो उसको भी समझ गया, किसी ज्योतिषी ने बताया होगा, तो उसको समझा कि अभी ये दिन पे मेरा मृत्यु है। तो उसने जो गरुड़ जी है उनसे विनती की कि हे गरुड़ जी, मुझे आप यहां से कहीं तो दूर लेके जाइए, मतलब जहां पे यमराज भी ना आ पाए। हाँ, तो गरुड़ जी बोले ठीक है मैं आपको लेके जाता हूं। तो वहां से उठाकर गरुड़ जी डायरेक्ट उसको साउथ पोल माने अंटार्कटिका वहां पे लेके गए, और वहां पे जाने के बाद उन्होंने देखा कि वहां पे यमराज उनका वेट ही कर रहे थे। तो यमराज बोले, अरे मैं सोच ही रहा था तुम उतने दूर कहां महाराष्ट्र में गालतरे गांव में खड़े हो, और वहां से आप अंटार्कटिका कैसे पहुंचोगे, आपका मृत्यु तो यहां लिखा है। अरे वाह, गरुड़ जी की मदद से आप स्वयं यहां पे आ गए। तो इस प्रकार ऐसा है कि मृत्यु है, इसको कोई टाल नहीं सकता है, परंतु भगवान का जो धाम है वहां पे किसी को मृत्यु नहीं है। हाँ, भगवान भगवत गीता में बोलते हैं यद गत्वान निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, वहां पे जाने के बाद वापस आने की आवश्यकता नहीं है। अदरवाइज यहां पे भौतिक जगत में आप जब रहते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, वापस 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 जन्म लेना पड़ता है, वापस पढ़ाई करना पड़ता है, वापस डॉक्टर बनना पड़ता है, वापस जॉब करना पड़ता है, वापस मरना पड़ता है, वापस दूसरे माता के गर्भ में जाना पड़ता है। तो अगर हमको इस चक्र से भी मुक्त होना है तो भी सीधा साधा उपाय है भगवान का आश्रय ले। परंतु ब्रह्मा जी से लेकर एक कीड़े तक किसी को भी मृत्यु चुकी नहीं है। ब्रह्मा जी का भी आयुमान भले हमसे बहुत ज्यादा है, लगभग इटर्निटी तक वो जीते हैं, परंतु उसके पश्चात उनको भी शरीर छोड़ना पड़ता है। तो हम इतने सारे राक्षसों का कथा सुनते हैं, हिरण्यकशिपु, फिर रावण, और कितने सारे राक्षस हमेशा ब्रह्मा जी का प्रार्थना करके उनसे क्या मांगते हैं, मुझे अमर बनाओ। तो ब्रह्मा जी का भी स्टैंडर्ड उत्तर है उनके लिए, क्या मैं खुद अमर नहीं हूं, मैं तुम्हें कैसे अमर बनाऊं। तो ब्रह्मा जी से लेकर कीड़े तक कोई भी अमर नहीं है, परंतु अगर हम भगवान के भक्त होकर हमारे जीवन का साफल्य करें, भगवान की प्राप्ति करें, भगवान की भक्ति में लीन हो जाए, तो अंते नारायण स्मृति, अगर अंत काल में हमें भगवान की स्मृति होती है तो निश्चित रूप से हम भगवान के धाम जाएंगे और वहां से यद गत्वान निवर्तन्ति, वहां से हमको वापस आने की आवश्यकता नहीं है। तो परंतु ब्रह्मा जी का महत्व तो बहुत है, वे उनका आयुष्मान बहुत ज्यादा है, वे हमारे परम पिता है, उन्होंने ही हमारी उत्पत्ति की है, वो बुद्धि के देवता है, उनको चार सर है, शरीर नहीं उनका पूरा शरीर बुद्धिमय है, इतना इंटेलिजेंस है भगवान के, भगवान ब्रह्मदेव के पास। परंतु भगवान श्री कृष्ण की लीला में हम देखते हैं कि किस प्रकार इतना इंटेलिजेंट व्यक्ति भी भ्रमित हो सकता है। तो यह स्टोरी हम शॉर्ट में आज सुनेंगे। तो यह जो कथा है उसका नाम है ब्रह्म विमोहन लीला, ब्रह्मा जी कैसे विमोहित होते हैं यह पास्ट टाइम आज हम सुनेंगे। उसके पूर्व बैकग्राउंड ऐसा है कि अघासुर नाम का एक असुर था, अघासुर नाम का पाइथन माने अजगर के रूप में एक असुर था, हालांकि वो पुतना और बकासुर इनका छोटा भाई था। तो अघासुर उसका नाम था और कंस ने, कंस का देखिए भले ही वो राक्षस है परंतु हमेशा कृष्ण का चिंतन करता रहता है, भले मृत्यु के रूप में उसको डर लगता है परंतु हमेशा कृष्ण का चिंतन करता है, हमेशा एक एक राक्षस भगवान के लिए, भगवान को मारने के लिए भेजता है। परंतु कोई भगवान को मार सकता है क्या? नहीं। पूतना आई, पूतना का भगवान ने वध कर दिया, फिर बकासुर आया उसका भी वध कर दिया, फिर अघासुर अपने बहन और भाई के अंत का बदला लेने के लिए वृंदावन जा पहुंचा, और इतना बड़ा अजगर पाइथन था वो कि वो जब अपना मुंह फैलाकर बैठा तो ऐसा लगने लगा कि एक बड़ी सी गुफा वहां पर तैयार हुई है, और उसने अपनी जिह्वा टंग वो बाहर रखी तो ऐसा लगा कि ये बड़ा सा एक रास्ता है। तो इतने बड़ा स्वरूप था उसका, इतना साइज बड़ा था। क्या नाम था इस राक्षस का? सब लोग हैं ना, क्या नाम था? अघासुर। तो अघासुर नाम का राक्षस इस प्रकार वृंदावन में जा बैठा, किसके लिए? कि भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए, साथ ही साथ उनके जो गोपाल मित्र है दूसरे गाय चराने वाले, इन सबको मारने का उसका प्लान था। इतना ही नहीं, उसने ये भी सोच के रखा था कि अगर मैं कृष्ण को और उनके जो सखा है उनको मारूंगा तो नैसर्गिक रूप से उनके माता पिता भी दुख में मर जाएंगे, तो लगभग सारे वृंदावन का नाश करने के लिए वहां पे अघासुर जा पहुंचा था। और भगवान श्री कृष्ण की लीला है, हर रोज सुबह उठने के बाद भगवान श्री कृष्ण को उनकी माता, भगवान की माता का नाम क्या है आप बताइए? हाँ आप ही, ब्लैक टी शर्ट। हाँ भगवान श्री कृष्ण की माता का नाम बताएं, यशोदा और देवकी, बराबर है। हाँ यशोदा और देवकी, परंतु देखिए देवकी ने जन्म दिया परंतु भगवान श्री कृष्ण का पालन पोषण यशोदा ने किया। यशोदा का और नंद महाराज का भाग्य, इसका वर्णन शास्त्रों में आता है कि बहुत ही ज्यादा भाग्य है कि उनके आंगन में स्वयं भगवान खेले हैं। तो हम देखो शास्त्रों में वर्णन आता है कि कोई व्यक्ति भगवान नहीं बन सकता है, कोई भी व्यक्ति, क्योंकि हम अणु छोटे हैं, भगवान के अंश हैं, हम कभी भगवान नहीं हो सकते। परंतु अगर हम भगवान की भक्ति अच्छे से किए तो हम भगवान के माता पिता भी बन सकते हैं, भगवान के भाई बन सकते हैं, भगवान के सखा बन सकते हैं, भगवान के अनेकों अनेक रूप में सेवा कर सकते हैं। तो हम देखते हैं नैसर्गिक रूप से माता पिता का स्थान अपने से ऊपर होता है, तो हम भगवान तो नहीं बन सकते परंतु भगवान के माता पिता भी बन सकते हैं अगर हमने भक्ति अच्छी तरह से किया और उस रूप से हमें सेवा मिला। तो अघासुर की लीला में और ब्रह्म विमान लीला में हम देखते हैं कि रोज की तरह भगवान श्री कृष्ण सुबह उठने के बाद उनके माता ने उनका श्रृंगार किया, उनको कपड़े वगैरह पहनाए, मोर मुकुट में मोर पंख लगाया, कान में कुंडल डाले और कमर पे बांसुरी लगाई, और उसके पश्चात सभी ग्वाल बालों के साथ गायों के बछड़ों को लेकर भगवान श्री कृष्ण गोचारण के लिए वन की ओर चल पड़े। और भगवान का ऐसा था कि रोज सुबह के टाइम पे वो जब जाते थे वन में तो कुछ तो खेल खेलते थे मित्रों के साथ, पिकनिक, जैसे हमने आज का टॉपिक लिया कि एंचेंटेड पिकनिक। तो किस प्रकार भगवान के जीवन में और भगवान के साथ रहने वाले नैसर्गिक रूप से उनके भक्त या जो ग्वालबाल है
उनके जीवन में रोज पिकनिक रहता था। तो रोज सुबह वो उठने के बाद नहा धोकर फ्रेश होकर अपने अपने टिफिन उनके घर से उनकी माताएं उनके लिए अलग अलग व्यंजन बना के देती थी, वो सब लेके गायों को लेकर वन की ओर चले जाते थे। और वहां जाने के पश्चात कुछ खेल खेलते थे, अलग अलग खेल। कुछ जो अलग अलग प्राणी है जैसे मोर है या मेंढक है, उनका आवाज निकालना, उनकी तरह जंप करना, उनकी तरह डांस करना, इस प्रकार। इतना ही नहीं, अलग अलग रूप से स्वयं का श्रृंगार, वापस वन में जाने के बाद वहां पर भी अलग अलग मिनरल्स, अलग अलग कलर्स रहते थे या फूल रहते थे अलग अलग वन के, उससे वे एक दूसरे का श्रृंगार भी अच्छे से करते थे। और घर पे माताएं करके भेजती थी, उसके पश्चात वन में जाने के बाद भी वे वापस से श्रृंगार करते थे, खेलते थे, ड्रामा करते थे, आवाज निकालते थे, अलग अलग खेल खेलते थे, पानी में भी तैरते थे, इस प्रकार। और इसके बीच में और उनका उत्कंठा बढ़ाने के लिए भगवान की लीला शक्ति के अनुसार एक हजार राक्षस आ जाता था हर रोज, कोई तो नया नया राक्षस, और भगवान श्री कृष्ण उस राक्षस को वध कर देते थे। और ये सब खेलने के बाद उनका लंच टाइम हो जाता था। तो इस प्रकार इस दिन भी वे पहुंचे वन में, और देखा तो एक नई गुफा उनको देखने को मिली। नई गुफा है, रास्ता इतना भव्य रास्ता भी है, चलो जाके देखते हैं। तो भगवान के जो ग्वाल बाल मित्र थे वे पहले इस गुफा की ओर, जो कि कौन था, आघासुर, स्वयं आघासुर अपना मुंह फैला हुए वहां पे बैठा था। तो उनके सखा जो मित्र है वो उस ओर आघासुर के मुख की ओर गुफा समझकर जाने लगे। और जैसे ही वे जाने लगे तो उसमें से कुछ ग्वाल बाल को ये अंदाज भी आ गया कि ये कुछ तो अलग है, ये रास्ते का कंसिस्टेंसी कुछ अलग है, इसमें कुछ स्मेल भी अलग आ रहा है। इतना ही नहीं कि यहां पे पहले गुफा नहीं थी, आज अचानक से गुफा कहां से आ गई, कहीं ये कोई राक्षस तो नहीं आया, इतना भी उनको अंदाजा आ गया। परंतु भगवान के भक्त का एक विश्वास भगवान के ऊपर बहुत ही रहता है, तो वो बोलते हैं कि अगर भले ही राक्षस भी रहा तो भी हमें कोई डरने की या घबराने की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे साथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, वे निश्चित रूप से इस राक्षस का भी अंत कर देंगे। और इस प्रकार नृत्य करते हुए, डांस करते हुए, अपना अपना जो बफेलो हॉर्न बोलते हैं उसको बगल ऐसा बजाते बजाते हुए वे अंदर गुफा की ओर चले गए। और जब वे गुफा में पहुंचे तब तक भगवान श्री कृष्ण को भी ये समझ में आया कि अरे ये राक्षस है, आघासुर है, और मेरे मित्र इस गुफा इसको गुफा समझकर आगे बढ़ रहे हैं। तो उनका रक्षण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण भी उनके पीछे दौड़ते हुए जाते हैं। भगवान का देखिए कि हमेशा अपने भक्तों का रक्षण करते हैं। तो वे रक्षण के लिए भगवान दौड़ते हुए चले गए, और जैसे ही भगवान उस गुफा में आघासुर के मुख रूपी गुफा में पहुंचे तो आघासुर ने अपना मुख बंद कर दिया, और अंदर के विष के कारण भगवान के सभी ग्वाल बाल मित्र ये मूर्छित हो गए, मानो प्राणहीन हो गए। और भगवान श्री कृष्ण ने जैसे कि भगवद गीता में वचन दिया है, नमे भक्ता प्रणश्यति, मैं अपने भक्तों का कभी रास नहीं होने देता हूं। तो भगवान ने ठान लिया कि मैं मेरे जो भक्त है, मेरे जो ग्वाल बाल मित्र है, उनका रक्षण करूंगा। और भगवान श्री कृष्ण अपना साइज बढ़ाते हैं और आघासुर का अंत कर अपने सभी ग्वाल बाल मित्रों को उसके जो विष से बचा लेते हैं। परंतु जब लीला चल रही थी तभी आकाश से सभी देवी देवता देख रहे थे, क्योंकि आघासुर, बकासुर, पुतना, ये जो बड़े बड़े राक्षस थे उनसे देवी देवता भी घबराए हुए थे, उनको भी उनका भय लगता था। तो जब ये आघासुर ने भगवान श्री कृष्ण को निगल लिया तभी देवी देवताओं के मन में भी एक भय उत्पन्न हुआ कि अभी कृष्ण का रक्षण होगा कि नहीं। हालांकि वे जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण सबके निर्माता है, भगवान श्री कृष्ण सबसे शक्तिमान है, भगवान श्री कृष्ण को कोई मार नहीं सकता, फिर भी देवी देवताओं को भय लगा कि अभी भगवान श्री कृष्ण को कौन रक्षण करेगा। परंतु निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण आघासुर का वध कर बाहर आ गए, और फिर उन्होंने अपने ग्वाल बाल मित्रों को भी उनको स्वस्थ कर दिया। परंतु ये जब लीला ब्रह्मा जी देखते हैं तो वे या सुनते हैं तो वे उनको लगता है कि सभी जो देवी देवता है उनको रिपोर्ट देते हैं और वे बोलते हैं कि इस प्रकार कृष्ण ने अघासुर का वध कर दिया और कृष्ण और कोई नहीं है तो भगवान विष्णु ही है। तो यह कहने के बाद ब्रह्मा जी को थोड़ा अचंभा होता है कि वे बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता कि यह छोटा सा बालक भगवान विष्णु है, निश्चित रूप से यह कोई मायावी होगा परंतु ये भगवान तो नहीं हो सकता क्योंकि भगवान की तो सभी गतिविधियां मुझे पता है। देखिए ब्रह्मा जी सत्य में भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी के विनती के अनुसार ही अवतरित हुए थे। हाँ भगवान हमेशा अपने भक्तों के इच्छा अनुसार ही कार्य करते बहुत बार। तो हालांकि ब्रह्मा जी ने ही उनको विनती की थी कि आप अवतरित हो जाइए और इस पृथ्वी को इन राक्षसों से मुक्त कीजिए, परंतु भूल गए। हाँ इतने बड़े ब्रह्मा जी, इतने विद्वान हमारे परमपिता होते हुए भी, इतने ज्ञानी होते हुए भी वे भूल गए। तो हमको चाहिए कि कभी भी हमारे ज्ञान के ऊपर हमें गर्व नहीं करना चाहिए क्योंकि बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी कभी कभी भ्रमित हो जाते हैं, है ना। तो हमको चाहिए कि हमेशा भगवान के आश्रय में रहना चाहिए। तो फिर ब्रह्मा जी ने सोच लिया कि मैं कृष्ण की परीक्षा लूंगा। उनको पता नहीं है कि कृष्ण स्वयं भगवान है, उनको लग रहा है कि एक छोटा ग्वाल बाल है। वो देखते हैं तो मैंने जैसे बोला कि एक राक्षस को मारने के बाद भगवान क्या करते हैं, लंच ब्रेक। भगवान अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ लंच प्रसाद लेते हैं। तो प्रसाद पाने के लिए उनके पास हमेशा थाली नहीं रहती है। हाँ जंगल में थाली रहेगी क्या, नहीं। तो पड़स या ऐसे कोई बड़े बड़े पत्ते रहते हैं, वो पत्ते के ऊपर कुछ लोग खाना खाते हैं, कुछ लोग अपने हाथ में ही खाना लेकर खाते हैं, कुछ लोग बड़े पत्थर लेते हैं, पत्थर में खाना रखकर खाते हैं। इतना ही नहीं और उनका बैठने का भी एक ऐसा स्पेसिफिक स्टाइल है, भगवान खाना खाने के लिए कैसे बैठते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण हमेशा सेंटर में बैठते हैं और कमल की पंक्तियों के अनुसार बाकी के ग्वाल बाल मित्र उनके आजू बाजू में राउंड राउंड में ऐसे बैठते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बोलते हैं उसको, कि ऐसे गोल गोल सब भगवान केंद्र में है और उनके आजू बाजू में सब उनके ग्वाल बाल मित्र प्रसाद के लिए बैठे हैं। और अब हमारा श्रीनाथ जी भवन आप देखेंगे उसमें ऐसा एक चित्र है कि किस प्रकार भगवान भोजन लेने के लिए बैठे हैं और उनके ग्वाल बाल मित्र उनके आजू बाजू में बैठे। शायद यहाँ पे भी किधर हो सकता है, यहाँ पे भगवान की सभी लीलाएं चित्रित की हुई है, परंतु इसमें वो वन भोजन का लीला नहीं है। परंतु इस प्रकार भगवान हमेशा बैठते हैं और बाकी के जो ग्वाल बाल मित्र है उनको हमेशा लगता है कि भगवान मेरी तरफ ही देख रहे हैं, ये केवल भगवान कर सकते हैं। अभी समझो मैं आपके सामने मुख कर बैठा हूं तो मेरे पीछे जो बैठे हैं प्रभु जी उनको लगेगा क्या कि मैं उनकी तरफ मुख करके बैठा हूं, नहीं। परंतु भगवान के बारे में यह सत्य नहीं है। भगवान एक ही साथ 16108 पत्नियों के महल में रह सकते हैं, हम दो जगह पे भी नहीं रह सकते। रह सकते क्या, मंदिर में भी खड़े हैं और हॉस्पिटल में भी है, हो सकता है, नहीं। तो एक ही जगह पे हम रह सकते हैं परंतु भगवान के बारे में ये चीज नहीं है। भगवान एक साथ 16108 महलों में 16108 रानियों के साथ रह सकते हैं। उसी प्रकार एक जगह पर सेंटर में बैठे हुए सभी ग्वाल बालों की तरफ चेहरा कर बैठ सकते हैं। इतना ही नहीं सभी ग्वाल बालों के साथ रिसिप्रोकेट अपने जो प्रेम का आदान प्रदान भी कर सकते हैं। तो जब भी लंच के लिए बैठे हैं तो एक ग्वाल बाल घर से कुछ लेके आया है, अरे कान्हा मेरी माँ ने रसगुल्ला बना के भेजा है, तुम खा के तो देखो, तो भगवान को खिलाएगा। दूसरा ग्वाल बाल बोलेगा अरे कान्हा मेरे माँ ने ये दही भात कर्ड राइस बना के दिया है, चख के देखो। एक ग्वाल बाल तो कान्हा के लिए नहीं दूसरे मित्र के लिए समोसा है ना, समोसे का स्टफिंग जो रहता है अंदर का वो निकाल दिया और उसमें गेंद के फूल जो रहते हैं फूलों का ऐसा बीज उसमें भर दिया और थोड़ा पैक करके दिया, मेरी माँ ने बहुत अच्छा समोसा बनाया है तुम टेस्ट करके तो देखो, और दूसरे ग्वाल बाल को खिलाता है और वो उत्साह में सब जो आनंद में है उत्साह में बड़ा सा बाइट ले लेता है और खाने के बाद क्या है कड़वा। तो वो खाके उसको तो गुस्सा आता है, परंतु ये दूसरा ग्वाल बाल हंसता है, ये हंसता है तो दूसरे ग्वाल बाल जो बाकी के आजू बाजू में बैठे उनको भी आनंद आता है, वे भी हंसने लगते हैं। और इन सब का आनंद देखकर जिसने कड़वा गेंद का फूल खाया है वो भी हंसने लगता है। तो भगवान का सेवा या भगवान का भक्ति ऐसा है कि उसमें कभी कभी थोड़ा कष्ट भी हुआ तो उसमें भी हमें आनंद आता है। भक्ति विनोद ठाकुर एक जगह पर कहते हैं कि सेवा सुख दुख परम संपदा, भगवान की सेवा में कभी कभी हमेशा तो सुख ही आता है परंतु कभी कभी दुख भी मिलता है, कोई प्रभु जी झाप देते हैं या कोई गलती हो जाता है, ऐसा कभी कभी हो जाता है, परंतु वह भी हमारी परम संपदा है, वो भी हमारा एक ट्रेजर है, धन है। तो इस प्रकार भले उस ग्वालबाल ने कड़वा गेंद का फूल खाया समोसा समझकर, फिर भी उसको भी आनंद आ रहा है। तो इस प्रकार भगवान का लीला चल रहा है, उसमें एक जगह पे ऐसा वर्णन है कि एक ग्वालबाल ने मुंह में छाछ भरा है, छाछ बटर मिल्क, और दूसरा ग्वालबाल उसके गाल को मारता है और वो छाछ बाहर निकलता है, और वो फिर तीसरा ग्वालबाल झेल लेता है मुंह से और पी लेता है। तो ये सब लीला देखते हुए भगवान ब्रह्मदेव बहुत भ्रमित हो जाते हैं। वो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण को जब भोग लगता है तो उसके कितने नियम है, हाँ, भोग बनाने वाला व्यक्ति ब्राह्मण दीक्षित होना चाहिए, उसने नहा धो के अच्छे से भगवान का भोग बनाना चाहिए, जो भोग बनाते हैं उसको ढककर लेके आते हैं ताकि कोई उसके ऊपर किसी की बुरी नजर ना पड़े, भोग लगाते समय पर्दा लगाया जाता है, घंटी बजाकर मंत्र बोलकर भगवान को प्रार्थना की जाती है, उसके पश्चात भगवान केवल अपनी दृष्टि से उस भोग को ग्रहण करते हैं। तो ये भगवान को भोग लगाने की विधि है, और यहाँ पे तो ग्वालबार अपना झूठा भगवान को खिला रहे, क्या ये कोई से भगवान हो सकते हैं क्या? ब्रह्मदेव भी भ्रमित हो गए, बोले मैं परीक्षा लूंगा। देखिए जैसे मैंने पहले ही कहा कि कभी भी किसी भी व्यक्ति को भ्रम हो सकता है, कभी गर्व नहीं करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया कि भगवान के जो ग्वाल बाल मित्र थे वो जो बछड़ों को लेकर वहां पे चराने के लिए आए थे उन बछड़ों को गायब कर दिया, चुरा लिया और उनको सेफ जगह पर रख दिया। और फिर ये जो ग्वालबाल मित्र और कृष्ण जो ये प्रसाद का आनंद ले रहे थे उनके ध्यान में आया, अरे हम तो प्रसाद ले रहे परंतु हमारी बछड़े कहाँ है, सभी बछड़े दिख नहीं रहे। तो भगवान श्री कृष्ण उनको कहते हैं कि अरे मित्रों तुम आनंद लो, तुम प्रसाद का आनंद लो, भोग लो, और मैं जाकर गायों को बछड़ों को ढूंढ के आता हूं। और उनको आनंद में छोड़कर भगवान बछड़े ढूंढने के लिए जाते हैं। जाते हैं तो पाते कि बछड़े कहीं भी नहीं मिलते, और वापस आके देखते हैं तो तब तक ब्रह्मा जी ने इन जो ग्वालबाल मित्र थे उनको भी चुरा लिया। और फिर ये सब करने के बाद नैसर्गिक रूप से भगवान श्री कृष्ण तो अंतर्यामी है, उनको क्या होने वाला है ये भी पता है, किसने किया है ये भी पता है। बहुत एक समय का अभाव है फिर भी शॉर्ट स्टोरी बोलता हूं कि एक गुरुकुल में एक शिक्षक रहते हैं, वे अपने सभी विद्यार्थियों को एक एक केला देते हैं बनाना, और बोलते हैं बच्चों आप ये केला ऐसी जगह पर जाके खाओ कि आपको कोई देखे ना, किधर भी जाके छुपकर खाओ, कैसे भी आप छुपकर खाओ पर आपको किसी ने देखना नहीं चाहिए, और वापस आके मुझे रिपोर्ट करो कि आपने कहां पे जाकर केला खाया। तो सभी जो गुरुकुल के विद्यार्थी रहते हैं वो अलग अलग जगह पर जाते हैं और वापस आते बोलते हैं कि मैं, एक जन बोलता है मैं तो झाड़ के पीछे जाके छुपकर खाया, किसी ने मुझे नहीं देखा। एक बोलता है मैंने तो जो ओढ़ने का रहता है पांगरण उसके नीचे जाके खाया गुरुजी और मुझे किसी ने नहीं देखा। एक बोलता है कि मैं जो बेड रहता है बेड सोने का उसके नीचे जाके बैठा था, किसी ने नहीं देखा, मैंने खाया। एक तो इतना उजार था वो बोला गुरुजी मैंने तो बाथरूम में जाके खाया, वहां पे तो कोई नहीं आता है। परंतु एक विद्यार्थी वापस आया, वो बोला गुरुदेव मैं केला वापस लाया हूं। बोला क्यों? गुरुदेव मैं किधर भी गया ना तो मुझे ऐसा जगह नहीं मिला कि वहां पे मुझे कोई नहीं देख रहा है। अरे ऐसा कैसा, इतने सारे विद्यार्थी हैं, सबको ऐसी एक एक जगह मिल गई कि जहां पे उनको कोई नहीं देख रहा था, तू कहां, तुझे ऐसी कैसी जगह नहीं मिली? तो बोलता है गुरुदेव मैं जहां पे भी गया वहां पे भगवान मुझे देख रहे थे और इसलिए मैं कहीं पे भी छुपाकर एक केला नहीं खा सका। तो हमको समझना चाहिए कि हमको कभी कभी लगता है हम ये गलत कार्य कर रहे हैं, हमें कोई देख नहीं रहा है। मराठी में एक गाना है कि डोळे झाकुनी पीते दूध जात मांजराची। हाँ, बिल्ली को लगता है कि मैं दूध पी रही हूँ, आंखें बंद कर लेती है और दूध पीती है, उसको लग रहा है कि मैं दूध पी रही हूँ, मुझे कोई देख नहीं रहा है, परंतु भगवान हमेशा सबको देख, वो बिल्ली को घर का मालिक बराबर देख के उसको दंडा दे देता है ना। उसी प्रकार हम कुछ भी गलत कार्य भी करते हैं या अच्छा भी कार्य करते हैं तो भगवान हमें हमेशा देखते रहते हैं। उसी प्रकार ब्रह्मा जी ने जब ये गाय सॉरी बछड़े और गोबाल जो भगवान के मित्र थे ग्वालबाल, इनको चुराया, तो भगवान को निश्चित रूप से ये पता था। और फिर भगवान ने लीला रचाने के लिए स्वयं को ग्वाल बालों में और इन बछड़ों में विस्तारित किया। देखो भगवान से ही सब लोग आए हैं। हाँ, जीव सब जीव क्या बोलते हैं, जीव अंश, हाँ, मामेव अंश जीव लेक जीव लोके जीव भूत सनातना। भगवत गीता में श्लोक है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मामेव अंश, ये सभी जो जीव है ये मेरे अंश है। तो सभी जन भगवान से आए हुए, तो ये भगवान ने अपने आप को इन ग्वाल बालों में और बछड़ों में विस्तारित किया। और ब्रह्मा जी एक क्षण में वापस आए देखने के लिए कि अभी कृष्ण का क्या हाल है, मैंने तो उसके सभी ग्वाल बाल मित्र और बछड़ों को चुरा लिया है, अभी देखते हैं कृष्ण क्या कर रहे हैं। देखने को आए तो क्या, कृष्ण वापस उन्हीं गाय बछड़ों के साथ, वो बछड़े वो ग्वाल बाल उनके साथ वही लीला कर रहे हैं। क्योंकि जैसे शुरुआत में मैंने कहा कि हमारा एक साल वो ब्रह्मा जी के लिए एक क्षण है, वे केवल जाके आए तब तक इधर पृथ्वी पर एक साल पूरा हो गया, परंतु एक साल में भगवान ने इधर वृंदावन में और अनेकों अनेकों लीलाएं की। क्या क्या लीलाएं की, सभी बछड़े और सभी ग्वाल बाल ये कौन थे, कौन थे, कृष्ण ही थे, क्योंकि कृष्ण खुद को एक्सपांड किए थे। तो समय जब ही हुआ शाम को घर जाने का बछड़े चराने के बाद, सभी ग्वाल बाल और सभी बछड़े कृष्ण समवेत वापस वृंदावन लौटे और अपने अपने घर अपने अपने गोठा जो भी गाय का जो भी रखने का है जगह वहां पर गए। और वहां पे जाने के बाद जो भी माताएं थी, जो ग्वाल बालों की माताएं थी और बछड़ों की माताएं गायें थी, इनको बहुत आनंद आया। ये हमेशा यशोदा माता के लिए उनके लिए आश्चर्यचकित रहती थी और आनंद व्यक्त करती थी कि क्या यशोदा का भाग्य है कि कृष्ण जो कि इतने सुंदर और इतने मधुर है वे उनका पुत्र बन के आए हैं। और हमें कभी भाग्य मिलेगा कि हम हमारा दूध कृष्ण को पिलाए। गायों को भी हमेशा ऐसा लगता था कि यशोदा माता कितनी भाग्यशाली है कि उनके साथ कृष्ण हमेशा रहते, कभी हमारे साथ कृष्ण रहेंगे, तो ये सबकी इच्छा थी। इसमें एक प्रभु जी बोलते हैं कि अगर हम कोई वैष्णव कुछ उसको अच्छा सेवा मिला है, बड़ा सेवा मिला है, उसमें हम उसको प्रोत्साहन देंगे, ना कि उससे जलेंगे या उसके ईर्ष्या करेंगे, तो भगवान हमको वो सेवा कभी नहीं देंगे या भगवान अपनी सेवा में भी नहीं रखेंगे। परंतु अगर कोई भक्त अच्छी सेवा कर रहा है और उसको हम प्रोत्साहन देंगे, उसके लिए हम आनंद व्यक्त करेंगे, तो नैसर्गिक रूप से वह सेवा भगवान कभी ना कभी हमको भी देंगे। मानो ये प्रभु जी भगवान के लिए अच्छा ड्यूटी वर्शिप कर रहे हैं, हाँ, भगवान का भोग अच्छा लगा रहे, आरती अच्छा कर रहे हैं और हम सबको लग रहा है कि अरे वाह अच्छा है, तो इनके आनंद में अगर हम भी आनंद मानते हैं तो नैसर्गिक रूप से कभी ना कभी हमको भी वह सेवा मिलेगी। परंतु अगर हम ईर्ष्या कर रहे हैं कि अरे क्या ये इसकी क्या योग्यता है, क्या इधर जाके भगवान की पूजा कर रहा है, ऐसा कुछ भी सेवा भगवान की कर रहा है, अगर हम ऐसा उसमें गलत चीजें ढूंढने जाएंगे तो भगवान हमको कभी सेवा नहीं देंगे। तो इस प्रकार यशोदा माता के भाग्य के लिए हमेशा जो गोपियां थी और जो गायें थी उनको लगता था कि हमको कृष्ण को स्तनपान कराने का लाभ कभी मिलेगा। और भगवान ने यह इच्छा जानकर इस एक साल में सबको यह आनंद दिया। साथ ही साथ जो किशोरवयीन गोपियां थी उनको हमेशा लगता था कि कृष्ण हमारे पति बने, तो इस साल में सभी ग्वाल बालों का सभी गोपियों के साथ विवाह हुआ, तो इसलिए सबको वह लाभ विवाह की कृष्ण को अपने पति के रूप में सब में पाया, क्योंकि सभी ग्वाल बाल कौन थे, कृष्ण ही थे। तो इस प्रकार और अनेकों अनेकों लीलाएं हुई। और जब ये साल खत्म होने आया तब भी जाके केवल बलराम जी को समझा कि ऐसा कुछ तो अलग चल रहा है। कैसे समझा, एक बार गोवर्धन पर्वत पर, पर्वत के ऊपर बड़े ग्वाल, जो ये ग्वाल बालों के माता पिता थे, या सॉरी पिताजी जो थे, वे गायों को चरा रहे थे, और नीचे जमीन के लेवल पे ये जो ग्वाल बाल थे वे बछड़ों को चरा रहे थे। जब ही इन दोनों ने एक दूसरे को देखा, ग्वाल बाल के जो बछड़े थे और जो बड़े गायें थी, उन्होंने जब ही इन बछड़ों को देखा तो तुरंत वे गोवर्धन पर्वत से भागते हुए इन बछड़ों के पास आए। और हालांकि ये बछड़े बड़े थे, मतलब ये एक साल के पहले जन्म लिए हुए बड़े बछड़े थे जो कि कृष्ण ही थे, तो ये बछड़े अपने माँ का स्तनपान करने लगे, दूध पीने लगे, और माएँ भी जो जो बछड़े हैं इनको ज़्यादा प्रेम से चाटने लगी और प्रेम करने लगी। और इसमें आचार्य कहते हैं कि सभी जनों को अपने पुत्रों से भी ज़्यादा प्रेम भगवान श्री कृष्ण से है। ऐसा तो इस भौतिक जगत में देखा नहीं जाता है। अपना पुत्र या पुत्री भले सुंदर हो ना हो, उसको बोलने आता हो ना आता हो, वो स्कूल में होशियार रहे ना हुए, कैसा भी रहे, अपना बच्चा ही अपने को अच्छा लगता है, बराबर है। परंतु वृंदावन में ऐसा नहीं है, सबको अपने पुत्र से ज्यादा प्रेम भगवान श्री कृष्ण के प्रति है। तो इसलिए इस लीला से बलराम जी को समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है, और फिर भगवान श्री कृष्ण उनको पूरा स्टोरी बोल देते हैं किस प्रकार ये हुआ। और जब ही ब्रह्मा जी ये देखते हैं कि किस प्रकार भगवान ने अपने आप को बछड़ों में और ग्वाल बालों में एक्सपांड किया है, तो उनको उनका जो भ्रम है वो दूर हो जाता है, उनको समझ में आता है कि अपनी गलती हो गई है, ये भगवान स्वयं कृष्ण ही स्वयं भगवान है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तो उनको ये समझ में आ गया। और फिर वे भगवान श्री कृष्ण की माफी मांगते हैं और भगवान श्री कृष्ण के लिए बहुत सी प्रार्थनाएं करते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए। और सभी प्रार्थनाएं होने के बाद ब्रह्मा जी अपने अपने धाम लौट जाते हैं। तो इस लीला में हमने देखा कि किस प्रकार भगवान के भक्त जो कि इतने विद्वान हैं वे भी कभी कभी भ्रमित हो सकते हैं। तो हमको चाहिए कि हमेशा भगवान के भक्तों का आश्रय लेना चाहिए, दूसरे भक्तों का संग लेना चाहिए, उनसे मार्गदर्शन लेना चाहिए, ताकि हमारे जीवन में कुछ गलती ना हो। अभी लास्ट में एक मैं बोलता हूं कि ऐसे जो इंचेंटेड पिकनिक है, हमने देखा कि किस प्रकार ग्वाल बाल और भगवान श्री कृष्ण रोज आनंद उठाते हैं, हम सबको अगर यह आनंद उठाना है तो हमें भगवान के धाम जाना चाहिए। और वो जाने का मार्ग क्या है, भगवद गीता में वो भी बताया है, जन्म कर्म चे मे दिव्यम यो मे वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुना। तो भगवान के अगर जन्म और कर्म की कथा हम सुनते रहेंगे तो उससे हमको भगवान की प्राप्ति होगी, वहां पे जाने के बाद हमें वापस वापस जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होगी। तो हम आप सबको आमंत्रित करते हैं हर रविवार को सुबह 10:30 से 12:30, इस समय में हम रविवारीय सत्संग कार्यक्रम संडे फिस्ट मनाती है, उसमें आइए, लाभ लीजिए। साथ ही साथ हर रोज सुबह भागवत क्लास होता है, वो सुनिए। ऑनलाइन भी बहुत से क्लासेस है, हमारा भगवद गीता कोर्स भी ऑनलाइन चलता है। तो ऐसे अनेकों साधन है भगवान की कथा सुनने के लिए। अगर हम हमेशा सुनते रहे तो नैसर्गिक रूप से हमें भगवान की स्मृति रहेगी और हम भगवत धाम जा सकते हैं। अंत में एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर हम कथा विराम देंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद।